श्लोक पद संधान वृत्त्या वा वाक्यार्थत्वेन वा पुनः दुष्ट प्रतीति करम ग्राम्यम यथा या भवतः प्रिया। पदों के जुड़ जाने के कारण अस्तित्व में आने से या वाक्य के अर्थ रूप में दोषयुक्त प्रतीति को करने वाला ग्राम्य होता है, जैसे या भवतः प्रिया, या भवतः प्रिया। पदों का प्रयोग ऐसे क्रम से किया जाए कि उनके मिलने से दोषयुक्त शब्द की प्रतीति हो। उदाहरणार्थ या भवतः प्रिया, जो आपकी प्रिया है, को इसी क्रम में या भवतः प्रिया, मैथुन में निपुण अथवा खूब समर्थ की प्रिया शब्द प्रतीति होती है, जो व्रीड़ा कारक है। शब्द परिवर्तन सह न होने के कारण यह शब्द ग्राम्यता है। श्लोक परम प्रहृत्य वृषांतः पुरुषो वीर्यवान इति एवमादिन शसंति मार्ग योरुभयोरपि। वीर्यवान पुरुष पर शत्रु पर अथवा खूब प्रहार करके विश्राम कर रहा है, इस प्रकार के कथन को दोनों ही मार्गों में अच्छा नहीं बताते। किसी ऐसे पद का प्रयोग किया जाता है जो स्वयं तो असभ्य नहीं है, पर अपने अन्य अर्थ के कारण वाक्यार्थ को अभिष्ट अर्थ के अतिरिक्त असभ्य अर्थ की ओर मोड़ देता है, जैसे परम प्रहृत्य वृषांतः पुरुषो वीर्यवान। पदावली में वीर्यवान विशेषण स्वतः तो निर्दोष है, परंतु प्रकृत वाक्य में परम शत्रु प्रहृत्य वीर्यवान शौर्यवान पुरुषो विश्रांतः अर्थ के अतिरिक्त वीर्यवान प्रचुर शुक्र रति क्रियायाम बहुकालम क्षमः पुरुषः परम अतिमात्रया प्रहृत्य शेपसा रमणी रति मंदिरम प्रचोद्य स्खलने सति विश्रांतः। इस अश्लील अर्थ की प्रतीति होती है। यहाँ वीर्यवान के स्थान पर यदि इसके वीरह शौर्यवान आदि किसी पर्याय का प्रयोग करते हैं तो यह दुष्प्रतीति नहीं होगी, अतः शब्द परिवर्तन सह नहीं होने के कारण यह ग्राम्यता शब्दगत है। अग्नि पुराण में ग्राम्यता का लक्षण बताते हुए उसके तीन भेद बताए हैं। खलीकृत एवं अव्यक्त ग्राम्य अर्थ को कहने से, याद करने से तथा ग्राम्य अर्थ के वाचक पद से किसी प्रकार के साम्य के कारण। श्लोक भगिनी भगवत्यादि सर्वत्रैवानुमन्यते विभक्तिमिति माधुर्यम्। भगिनी भगवती इत्यादि कथन सभी मार्गों में अनुमत है, इस प्रकार माधुर्य का स्वरूप निरूपण संपन्न हुआ। ग्राम्यता का विषय लोक प्रयोग पर आधारित है। लोक और शास्त्र में ग्राम्य शब्द की प्रसिद्धि से ग्राम्यता उद्वेगकारी नहीं होती। भग शब्द के छह अर्थों से एक अर्थ स्त्री का गुप्तांग है, इससे निष्पन्न भगिनी भगवती आदि शब्दों में इस अर्थ का सद्भाव हो या न हो, ऐसे शब्द लोक में स्वीकृत हैं, अतः दोषयुक्त नहीं है। कारण अर्थ में योनि शब्द तथा शिवलिंग में लिंग और वैदिक शिष्ण देव में शिष्ण शब्द ऐसे ही निर्दोष शब्द हैं। व्रीड़ाजनक ग्राम्यता जुगुप्साजनक और अमंगल सूचक ग्राम्यता की उपलक्षक है। इस प्रकार की ग्राम्यता वैदर्भ और गौण दोनों मार्गों में वर्जित है। दंडी ने इस प्रकार माधुर्य गुण का विवेचन किया। इसके दो अंग हैं, अन्वय मुखेन तो यह कि शब्द या अर्थ जिस किसी अलंकार से काव्य में आह्लाद का अतिशय होने पर माधुर्य गुण होता है। शब्द अलंकार में श्रुति अनुप्रास काव्य को मधुर बनाता है। अनुप्रास के अन्य भेद तथा यमक उसे मधुर बना भी सकते हैं, नहीं भी। व्यतिरेक मुखेन माधुर्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु दंडी के मत में शब्दगत और अर्थगत ग्राम्यता का विपर्य उत्तरदायी है, अर्थात ग्राम्यत्व दोष काव्य की आह्लादकता का सर्वाधिक विघातक दोष है। अग्राम्यत्व से ग्राम्यत्व का अभाव मात्र नहीं अपितु उसका विपर्य नागरकत्व अभिप्रेत है, जिसके बिना काव्य में माधुर्य का आधान असंभव है। नागरकशील और संस्कार को व्यक्त करने वाले अभिव्यक्ति स्वभावतः मधुर हो जाती है। लखनऊ की तहजीब इसी प्रकार के माधुर्य की सृष्टि करती है। वक्ता आदि के औचित्य के अनुसार चरित्र की ग्राम्यता को प्रकट करने को किया ग्राम्य प्रयोग काव्य में दोष नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ मृक्ष कटिक में के शकार प्रयोग लिए जा सकते हैं। माधुर्य का इतिहास भरत ने ग्राम्यत्व को भिन्नार्थता नामक दोष के अंतर्गत माना है। यह ग्राम्यता सामान्य दोष ही है, किसी गुण का विघातक धर्म नहीं है। भामा ने दंडी के ग्राम्यत्व को श्रुति दुष्ट, अर्थ दुष्ट और कल्पना दुष्ट में विभाजित किया है। भरत के अनुसार माधुर्य गुण शब्दगत और अर्थगत दो प्रकार का है, जो वाक्य बहुत तरह से श्रुति गोचर होकर भी श्रोता को उद्विग्न नहीं करता। वह शब्द माधुर्य है जो वाक्य पुनः पुनः कहा हुआ भी पौनरुक्त्य दोष के कारण होने वाले उद्वेग से श्रोता को व्याकुल नहीं करता। वह अर्थ माधुर्य है। भरत के इस माधुर्य से दंडी के माधुर्य में एक मुख्य अंतर है। भरत उद्वेगता के अभाव को ही माधुर्य गुण मानते हैं, जबकि दंडी रसावहता को, अर्थात दोनों में निषेध मुखता और विधि मुखता का अंतर है। भरत दोष के अभाव को गुण मानते हैं, दंडी दोष के विपरीत भाव को। स्पष्ट है कि उद्वेजक नहीं होना मात्र काव्य में रसाधान नहीं करता। कौन कवि उद्वेजक काव्य की रचना करता है? इसके अतिरिक्त भरत के शब्दगत माधुर्य के लक्षण की शब्दावली अस्पष्ट है। इसे बहुशः के व्याख्या भेद से समान पदासक्ति अनुप्रास के पक्ष में लगाना अधिक आसान है। बनिस्तबत की वामना भी मत पृथक पदत्व के रूप में लगाने के। अग्निपुराण में माधुर्य नाम से जो अर्थगुण उपलब्ध है, वह दंडी के माधुर्य से पूरी तरह भिन्न है। दंडी के माधुर्य के निकट पड़ने वाला अग्निपुराण का गुण है, पाक यह शब्दार्थो भय गुण है। रसयुक्त के रूप में ऊंची अद्भुत परिणति पाक कहलाती है। यह द्राक्षा पाक, नारिकेल पाक आदि भेद से चार प्रकार का है। इनमें आदि और अंत में सुष्ठु रसवत्ता द्राक्षा पाक है, जो दंडी के रसवत कथन का कुछ भिन्न प्रकार से किया निरूपण हो सकता है। वामन ने गुणों से पाक को पृथक, उनकी स्फुटता और समग्रता को काव्य का पाक बताया है, जिसके उन्होंने सहकार पाक और वृत्तांत पाक दो भेद बताए हैं। उन्होंने लंबे समासों से रहित अलग अलग पदों वाले बंध को शब्द की दृष्टि से मधुर माना है, तथा वर्णनीय विषय के प्रकर्ष को उक्ति वैचित्र से कहने से काव्य को अर्थ की दृष्टि से मधुर माना है। उच्चते सुकुमारता। इस प्रकार माधुर्य गुण का विवेचन समाप्त करके अगले चार श्लोक में पंचम सुकुमारता गुण का निरूपण किया गया। उच्चते सुकुमारता, सुकुमारता बताई जा रही है। श्लोक अनिष्ठुराक्षर प्रायम सुकुमार मिहिष्यते बंध शैथिल्य दोषो ही दर्शितः सर्व कोमले। कठोर के विपरीत कोमल अक्षरों की अधिकता वाला काव्य यहाँ सुकुमार कहलाता है, क्योंकि सब कोमल अक्षर वाले काव्य में बंध की शिथिलता दोष बताया जा चुका है। सुकुमारता शब्द गुण है। समता नामक तीसरे गुण के संदर्भ में मृदु, स्फुट और उन्मिश्र वर्णों की चर्चा की जा चुकी है। जिस रचना में निष्ठुर वर्णों का प्राय परिहार किया जाता है और उसके विपरीत कोमल वर्ण प्राय प्रयुक्त होते हैं, कठोर वर्ण यत्र तत्र इक्के दुक्के प्रयुक्त होते हैं, वह रचना यहाँ सुकुमार कहलाती है। बंध की इस विशेषता का नाम सौकुमार है। कोमल वर्णों की अधिकता कहने का प्रयोजन यह है कि श्लेष नामक प्रथम गुण के प्रसंग में सभी कोमल वर्णों के प्रयोग को शिथिलता नामक दोष के रूप में कहा जा चुका है। श्लोक मंडली कृत्य बर्हाणी कंठर मधुर गीत भी कलापिनः प्रनृत्यन्ति काले जिमूत मालिनी। मधुर मेधमालाओं वाले काल में पिच्छों को गोल बनाकर मीठी गीतियों वाले कंठों के साथ नाच रहे हैं। 70वें श्लोक में वर्षा काल में पांखों को गोल गोल फैलाकर मधुर केकाओं को उच्चारते मयूरों के नृत्य का वर्णन कोमल वर्णों की अधिकता वाले पदों में प्रधानता से किया गया है। कठोर वर्ण डर ह ठ ध भ तथा उसके बाद इकारोत्तरवर्ती विसर्ग एवं पुनः कलापिनः के अंत में विसर्ग और प्र का प्रयोग कोमल वर्णों की अपेक्षा अल्प एवं अप्रधान है। व्यंजनों के अतिरिक्त स्वरों के प्रयोग में भी गुरु दीर्घ आ ए आदि का प्रयोग कम है। इस प्रकार इस पद में सुकुमारता गुण उर्जित अवस्था में है। वर्षा काल में मयूर नृत्य वर्णन में अर्थ और अलंकार की दृष्टि से कोई सौंदर्य नहीं है। केवल अपुष्ट सी स्वभावोक्ति और केका के स्थान पर गीति के आरोप की व्यंजना है। यह श्लोक केवल सुकुमार बंध के कारण सहृदयों के मुंह पर अथवा मन पर चढ़ता है।